श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 24। इस अध्याय का शीर्षक है गोवर्धन पूजा, श्लोक क्रमांक 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तस्माद् गवाम् ब्राह्मणानाम् अद्येश्चारभ्यताम् मखः य इन्द्र इन्द्रयाग संभारास्तैर् अयम् साध्यताम् मखः। अतः गौओं, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के आनंद हेतु यज्ञ का शुभारंभ हो। इंद्र के पूजन के लिए जितनी सामग्री एकत्रित की गई है उससे यह यज्ञ संपन्न किया जाए। पच्यन्ताम् विविधा पाका सूपान्ता पायसादयः संयावापू पशुष्कुल्य सर्वहो सर्वदो हस्य गृह्यताम्। खीर से लेकर तरकारी या शोरबा तक के विविध पकवान तैयार किए जाए, अनेक प्रकार के बढ़िया पापड़ तल लिए जाए तथा सेक लिए जाए तथा दूध के जितने भी पदार्थ मिल सके उन्हें इस यज्ञ के लिए एकत्रित किया जाए। हूयंतामग्न यः सम्यग् ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहुगुणं तेभ्यो देयं वो धेनुदक्षिणाः। वैदिक मंत्रों में पटु ब्राह्मणों को चाहिए कि यज्ञ की अग्नियों का ठीक से आवाहन करें। तत्पश्चात तुम लोग पुरोहितों को उत्तम भोजन कराओ और उन्हें गौओं तथा अन्य भेटे दान में दो। अन्येभ्यश्चाश्वचाण्डाल पतितोभ्यो यथार्हतः यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयताम बलिहि। कुत्तों तथा चांडालों जैसे पतितात्माओं समेत हरेक को उपयुक्त भोजन देने के बाद तुम सबों को चाहिए कि गौओं को घास दो और तब गोवर्धन पर्वत को अपनी सादर भेंटे चढ़ाओ। स्वलंकृता भुक्तवन्तः सोनुलिप्ता सुवाससः प्रदक्षिणां च कुरुत गोवि प्रानल पर्वतान। भरपेट भोजन करने के बाद तुम में से हरेक को वस्त्र तथा आभूषण से खूब सजना चाहिए, अपने शरीर में चंदन लेप करना चाहिए और तत्पश्चात गौओं ब्राह्मणों यज्ञ की अग्नियों तथा गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। एतन् मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मखः। हे पिता, यह मेरा विचार है और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे कीजिए। ऐसा यज्ञ गवो ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत को एवं मुझको भी अत्यंत प्रिय होगा। तात्पर्य, ब्राह्मणों गवों तथा स्वयं भगवान को जो भी अच्छा लगे वह शुभ है और अखिल विश्व के लिए लाभप्रद है। आधुनिक लोग जो कि आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं इसे नहीं समझते। इसके विपरीत वे जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के कारण तथाकथित वैज्ञानिक संपूर्ण पृथ्वी का विनाश कर रहे हैं। हरे कृष्ण। आज इस कार्तिक महीने का एक बहुत ही शुभ अवसर है श्री गोवर्धन पूजा का। आज वृंदावन में कई लोग हजारों यहां तक कि लाखों की संख्या में श्री गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को और ब्रजवासियों के द्वारा हमेशा के लिए उनके भक्तों को अपना हृदय की जो इच्छा है वो बतलाई। वैयक्तिक रूप से उन्होंने ये गोवर्धन पूजा स्थापित की। श्री गोवर्धन पर्वत जो है ये एक मामूली पर्वत नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि ये कहां से उद्भव हुआ। बताया जाता है कि संसार से परे सारे वैकुंठ धाम हैं और जिनमें से सर्वश्रेष्ठ है गोलोक वृंदावन धाम। और गोलोक वृंदावन में जहां भगवान श्री कृष्ण अपने सारे नित्य पार्षदों के साथ निवास करते हैं, वहां श्री गोवर्धन विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में यह इच्छा हुई कि श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए एक सुंदर स्थल होना चाहिए। जब उनके मन में विचार आए तब उनके हृदय से एक सुंदर पर्वत उत्पन्न हुआ जिसका नाम था गोवर्धन, जो शाश्वत नित्य श्री गोलोक वृंदावन धाम में विराजमान है। और जहां श्री श्री राधा और कृष्ण अपने सारे पार्षदों के साथ बहुत ही सुंदर लीलाएं वहां करते हैं। जब भगवान के इस संसार में अवतरित होने का समय आया तब श्रीमती राधा रानी ने प्रकट किया अपने हृदय की बात और कहने लगी कि मैं इस भौतिक संसार में तब तक नहीं आऊंगी जब तक यमुना और गोवर्धन भी ना आ जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, गोवर्धन पहले ही वहां इस सेवा हेतु जा चुका है, प्रकट हो चुका है। तो इस भौतिक संसार में गोवर्धन का जो प्रकटीकरण था हिमालय में द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और एक समय पुलस्त्य मुनि भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे और जब गोवर्धन की सुंदरता को देखी तो उन्होंने उनके पिता द्रोणाचल के पास गए और उनसे निवेदन की कि मेरा निवेदन है कि मैं इस सुंदर गोवर्धन पर्वत को अपने भजन स्थान जो वाराणसी में है वहां मैं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि वहां कोई पर्वत है ही नहीं। बड़े दुखी हृदय से द्रोणाचल ने स्वीकार किया इस निवेदन को और तत्पश्चात अपनी योगिक शक्ति से पुलस मुनि ने गोवर्धन को वाराणसी ले जाना चाहा। गोवर्धन ने एक शर्त रखी कि अगर आप मुझे नीचे रख दोगे एक बार कहीं भी तो वहां से मैं उठूंगा नहीं। तो पुलस मुनि गोवर्धन को धारण किए और चल रहे थे और चलते 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 बीच में पुलस मुनि को नेचर्स कॉल, क्या कहते हैं, प्रकृति का बुलावा आया। तो वो गोवर्धन हाथ में रख के तो ऐसे कार्य नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने गोवर्धन को नीचे रखा, अपना कार्य संपन्न किए, हाथ धोए, आचमन हुआ और उसके बाद फिर से गोवर्धन धारण करने गए। गोवर्धन ने कहा कि नहीं, मैंने आपको कहा था एक बार नीचे रखने के बाद नहीं ऊपर उठूंगा मैं फिर से। और ये स्थान था वृंदावन, क्योंकि गोवर्धन का एकमात्र उद्देश्य इस भौतिक संसार में अवतरण होने का था कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में वो मदद करें। पुलस मुनि बड़ी क्रोधित होकर उन्होंने शाप दिया गोवर्धन को कि तुम हर रोज एक राई का दाना जितना जो उतना कम होते जाओगे, घटते जाओगे। और ये तथाकथित शाप वरदान के रूप में साबित हुआ। क्यों? क्योंकि सतयुग में हुआ ये लीला। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आने वाले थे, गोवर्धन इतना ऊंचा था, कई मील लंबा, तो वहां शायद भगवान को लीला करने में अनुकूल नहीं होता। तो ये शाप वरदान में परिवर्तित हो गया और जब द्वापर में भगवान ने लीला करने अवतरित हुए तब ये तकरीबन 2 मील लंबा था। ये तो बाहरी कारण है, पर अंदरूनी कारण आचार्य बतलाते हैं कि ये है कि गोवर्धन भगवान के विरह में आज भी घटता जा रहा है। आज वृंदावन में सबसे ऊंचा स्थान जो है गोवर्धन का, वो 80 फुट लंबा है। तो इस तरह से गोवर्धन पर्वत वृंदावन में स्थित हुआ। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो यहां बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं गोवर्धन और उसके आसपास भगवान श्री कृष्ण का हुआ। सुंदर लीलाएं रची गई वहां, भगवान के सबसे अंतरंग कई बार लास लीला जो थी वो भी गोवर्धन पर्वत पे भी हुई, वंशीवट के अलावा। रूप गोस्वामी भक्तर साम्र सिंधु में कहते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य तदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन। के वैकुंठा जनितो वरा, इस वैकुंठ जो है वो सबसे श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है मथुरापुरी, मधुपुरी, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उससे भी श्रेष्ठ है वृंदावन, जहां भगवान ने सुंदर लीला की, और उससे भी श्रेष्ठ है वो गोवर्धन पर्वत जिसको वैयक्तिक रूप से भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही हाथों में धारण किया 7 दिन और 7 रात। और गोवर्धन के तट पर जो राधा कुंड है वो पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में, आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि में सर्वोच्च पवित्र स्थान माना जाता है। तो यहां बहुत सारी सुंदर रमणीय लीलाएं हुई। भगवान का एक नाम है भूरिकर्म, यानी एक ही साथ वो बहुत सारे कार्य संपन्न कर लेते हैं। तो एक लीला सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद में वर्णन करते हैं। 4 अध्यायों में गोवर्धन लीला का वर्णन हुआ है। दशम स्कंद भागवत सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है और उस ग्रंथ में दशम स्कंद सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और उसमें 4 अध्याय ये सुंदर गोवर्धन लीला का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन करते हैं किस तरह से ये गोवर्धन लीला हुई। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ जब यज्ञ पत्नियों को अपनी कृपा दी, तत्पश्चात वो वहां से जब निकले, उसी गांव में उन्होंने देखा कि नंद महाराज और सारे ग्वाल बाल बहुत बड़े एक यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो भविष्य, वर्तमान और भूत सब कुछ जानते हैं, नंद महाराज के पास गए और कहने लगे कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं आप कुछ यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, क्या यज्ञ है ये, किसके लिए किया जा रहा है, क्या हेतु है इसका, क्यों करने जा रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे। क्या उन्हें मालूम नहीं था, हर साल तो देखते थे ये, पर यहां पूछने का उद्देश्य कुछ और था, क्योंकि भगवान जानते थे कि अभी बहुत छोटे कम ही समय में अभी एक सुंदर लीला करने वाले हैं, गोवर्धन लीला, जिसके द्वारा इंद्र के जो अहंकार है, पर्वत जैसा अहंकार, उस पर्वत जैसे अहंकार को चूर करने के लिए गोवर्धन का वो आश्रय लेने वाले हैं, गोवर्धन के द्वारा करने वाले हैं। तो पूछने लगे और कहने लगे आप ये मत सोचो कि मैं छोटा बच्चा हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं, और परिवार के सदस्यों की भी जैसे गुह्य या रहस्य नहीं होनी चाहिए। नंद महाराज हो सकते ये बच्चा है, इसको क्या बोलूंगा, या इसा शायद समझ नहीं पाएगा, बोले नहीं बताइए आप। तो नंद महाराज कहने लगे कि देखो बेटे, हम ग्वाल बाल हैं और हमारा मुख्य है गोरक्षा, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है घास और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है बारिश, अगर वर्षा नहीं होगी कैसे होगे ये सब। तो इसीलिए कई पीढ़ियों से ये प्रथा चली आ रही है कि हम हर साल इंद्रदेव की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्रदेव जो हैं वो बारिश के अधिपति हैं, वो बादलों को भेजते हैं, उन्हीं के द्वारा वर्षा होती है, जिसके द्वारा इतने सुंदर घास उगते हैं, जिसके द्वारा हमारे गैया सुखी रहती है, इसीलिए ये हमारे पुराने रीति रिवाज के अनुसार हर साल हम ये यज्ञ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते थे, क्योंकि परमात्मा है सबके हृदय में, वो और जानते थे कि इंद्र को बहुत अहंकार हो गया है। एक दिन मान इंद्र को मारियो, नख ऊपर गोवर्धन धारियो, नाम पढ़ो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो भगवान ने सोचा कि ठीक है चलो इस इंद्र पूजा को रोकते हैं और इस इंद्र पूजा के द्वारा सारी सामग्रियों को गोवर्धन की पूजा कराते हैं। तो भगवान ने बड़े अजीब तरीके से नंद महाराज को एक ऐसा सिद्धांत बोलने लगे जो कर्मवाद, कर्म मीमांस या नास्तिक सांख्यवाद कहा जाता है, जो सिद्धांत नहीं है, गलत वाद है, पर जानबूझ के इंद्र को भड़काने के लिए नंद महाराज से कहने लगे, बोले इंद्र की पूजा क्या जरूरी है। कहने लगे, देखिए पिताजी, अगर हम अपने कर्म करेंगे तो यह प्रकृति का नियम है कि फल मिलेगा ही, तो यह इंद्र के ऊपर निर्भर नहीं है। अगर हम कर्म करेंगे, अपना कर्म से ही हमारा जन्म, हमारा सुख दुख मृत्यु सब अपने कर्म के ऊपर निर्भर है, कर्म के अनुसार हमें चीजें उपलब्ध होती है। और अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं ये कर्म कोई इसके पीछे कोई तो व्यक्ति तो देना चाहिए, या अपने आप तो कर्म नहीं कर सकती, अगर इसके पीछे भी कोई देवता है या भगवान है वो भी बद्ध हैं, अगर हम कर्म करेंगे तो वो लाचार हैं, कर्म को के नियम को उनको देना ही पड़ेगा, यानी वो भी कर्म के अधीन हैं। और हमें अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए, कर्म ही पूजा, वर्क इज वर्शिप। अब आपको मालूम है कहां से आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। सब प्रकार के सिद्धांत हमेशा इस संसार में निवास करते हैं, जिस प्रकार 84 लाख योनियां हमेशा होती है, इधर कभी थोड़ा लुप्त हो जाता है कभी प्रकट होता है, इस तरह से सारे प्रकार के अपसिद्धांत हमेशा इस संसार में रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अपनी चेतना जितना जितना विकसित होती है हर एक स्तर पर एक एक सिद्धांत व्यक्ति निर्माण करता है। जिस प्रकार 84 लाख अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती है, इच्छा के अनुसार एक शरीर मिलता है, इस तरह से अलग 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 प्रकार की जो चेतना का विकसित हुआ है उसके प्रकार अलग अलग सिद्धांतों को व्यक्ति स्वीकार करता है। कोई नई बात नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर इस स्थान पे काफी मंदिरें आ जाएंगी तो सत्वगुण बढ़ जाएगा, सुबह सुबह लोग आना शुरू करेंगे। अगर यहां फैक्ट्री लगा दिया जाए तो सूर्योदय के बाद 10 बजे लोग आया करेंगे, 6 बजे चले जाएंगे, रजोगुण बढ़ जाएगा। अगर इसी जगह पे सारे बारन क्या बोलते हैं दारू के दुकान खोल दिया जाए, रात को एक्टिविटी बढ़ जाएगा इधर सब। जैसा वातावरण निर्माण करेंगे वैसे लोग यहां आकर्षित होंगे। इसी तरह से जिस प्रकार की चेतना बढ़ता है संसार में, जिस प्रकार के लोग, वैसे सिद्धांत प्रचलित होता है। तो कोई नई बात नहीं है। तो इस तरह से कहने लगे भगवान श्री कृष्ण, और कहने लगे 3 गुण जो है उसी के द्वारा ये संसार सब चल रहा है, वो ही नियंत्रण करता है परम अंततः। तो हमारा कर्म और ये 3 गुण, इसके द्वारा ही सब चलता है। रजोगुण में आकर बारिश होता है, वहां से घास उगती है। और अरे यज्ञ करके क्या फायदा, इंद्र तो वैसे भी देना है, मजबूर है देने में, क्योंकि समुद्र कोई यज्ञ थोड़ी करता है, समुद्र में भी तो पानी बरसाता है बादल, तो ये यज्ञ वज्ञ छोड़ दो। सचमुच में हम लोग निर्भर हैं, ब्राह्मण हमारे लिए अच्छे प्रार्थना करते हैं, गाय हम गाय के ऊपर हम निर्भर हैं, और गोवर्धन के ऊपर हम पूर्ण रूप से आश्रित हैं, क्योंकि ये सुंदर सुंदर घास देती है हमारे लिए। इसीलिए पिताश्री एक काम कीजिए, ये इंद्र के यज्ञ की जितनी सामग्री आप एकत्रित किए हो, ये सबको तुरंत आप उस यज्ञ को रोक दो, और यज्ञ की सामग्री को लेकर गोवर्धन की पूजा करो। और जैसे हमने यहां पढ़ा, साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने ही मुख से गोवर्धन पूजा किस तरह करना चाहिए उन्होंने बताया। अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, जो कुछ भी हो सके सब बनाओ, अच्छे अच्छे भोग, और ब्राह्मणों को, गायों को, सब प्रकार के लोगों को, और फिर नीच से नीच पशु हैं सब जीवों को अच्छे तरह से खिलाओ, गोवर्धन को लगाओ ये भोग, और तत्पश्चात अच्छे तरह से सज धज कर गायों को सामने रखते हुए गोवर्धन की आप परिक्रमा करो। इस तरह से गोवर्धन पूजा की शुरुआत जो है भगवान श्री कृष्ण खुद 5000 साल पहले इसकी शुरुआत की। नंद महाराज और सारे ग्वाल बाल, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ही सर्वस्व है। वो कुछ नियम भी पालन करते तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। सचमुच में हम जो भी शास्त्रों का इसलिए पालन करते हैं क्योंकि कृष्ण कहते हैं वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, अंततः वेद कृष्ण ने दिया है, और कहते हैं कि वो पालन से मुझको जानना है, मुझको प्रसन्न करना है। सुनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्, अंततः सारे धर्म का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना। अगर भगवान खुद कह रहे हैं कि ये छोड़ दो और ये करो, करेंगे, हम ऐसे नहीं करते, समस्या हमारी यही है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक पतिव्रता स्त्री थी, एक पति को खिलाती थी, उसके बाद जो बचता था वही खाती थी वो। तो एक बार पतिदेव बाहर चले गए, गांव के बाहर कहीं, तो पति का फोटो रखकर उसको भोग लगाती थी और उसके बाद खाती थी। तो एक दिन पतिदेव को भोग लगाई और सामने बैठी हुई थी ध्यान लगा के, तो किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो उसने कहा नहीं अभी भोग लग रहा है 20 मिनट के बाद, उसके बाद मैं प्रसाद ग्रहण करूंगी, उसके बाद दरवाजा खोलूंगी। जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, बोले मैं तुम्हारा पतिदेव हूं, दरवाजा खोलो भाई। बोले नहीं भोग लग रहा है, ठहरो। अरे मैं भूखा हूं, बोले भूखा तो मैं क्या करूं, अभी भोग लग रहा है ठहरो, उसके बाद मैं खाऊंगी, उसके बाद दरवाजा खोलूंगी। तो हम कहेंगे बड़ी मूर्खता है, ये पतिव्रता नहीं मूर्खता है। अरे जिसकी फोटो की पूजा करे वो खुद कह रहा है कि अभी को दरवाजा खोलो, मुझे भूख लग रहा है। इस तरीके से शास्त्रों का नियम हम क्यों पालन करते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत, मैंने वेदों का निर्माण किया है, जिसके द्वारा माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कोयला कृष्ण वेद पुराण। भगवान ने कहा इन वेदों को पालन करके मुझे समझो, इसीलिए अगर भगवान खुद कह रहे हैं कि वो सब छोड़ो और गोवर्धन की पूजा करो, क्यों नहीं करेंगे। लोग ये नहीं समझ पाते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा अभी तुम कर्ण को मारो, जब वो निहत्था है, धर्म संस्थापनार्था यह संभवामी युगे युगे, धर्म की संस्थापना करने आ रहे हैं, और अर्जुन को कह रहे हैं अब इसको क्या बोलते हैं, कर्ण को अभी मारो जब वो निहत्था है। युधिष्ठिर को बोलते हैं बोलो अश्वत्थामा मर गया, भीम को बोलते हैं अभी मारो दुर्योधन को, जांग पे मारो। अरे ऐसा कैसे कह रहे भगवान, धर्म के विरुद्ध कैसे कह रहे हैं? उन्होंने ही धर्म में स्थापित किया ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो खुद कह रहे करो। और उनके भक्तों ने पालन किया उसका, थोड़ा हिचकिचाए युधिष्ठिर महाराज पर पालन किया। तो एक बार मैं एक कॉलेज में प्रवचन दे रहा था तो एक व्यक्ति खड़े होकर उसने ये प्रश्न पूछा, ऐसे कैसे करते हैं श्री कृष्ण, ऐसे क्यों बोले? तो मैंने कहा कि दोनों ने तोड़ा नियम, पांडवों ने भी नियम तोड़ा, कौरवों ने भी नियम तोड़ा, है कि नहीं? अभिमन्यु को जब मारा तो सब लोगों ने नियम तोड़ा, पांडवों ने भी नियम तोड़ा कृष्ण के कहने पर, कौरवों ने भी नियम तोड़ा अपने फायदे के लिए। अंतर यह है, पांडवों ने नियम का पालन किया क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी। वो अगर वो नियम तोड़ना चाहते थे तो सबसे उत्तेजित करने वाला स्थिति था जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, अगर नियम तोड़ना था तो उस समय तोड़ते थे, वो उनमें ताकत थी और वो खत्म कर सकते थे सारे कौरवों को। पर क्यों नहीं, भगवान श्री कृष्ण इससे प्रसन्न नहीं होंगे, कृष्ण की आज्ञा के विरुद्ध है वो। पर वही भगवान श्री कृष्ण जब खुद कहे कि तोड़ो तब उन्होंने तोड़ा, क्योंकि हमको नियम पालन करने से या तोड़ने से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कृष्ण को प्रसन्न करने से। क्योंकि भगवान ने गीता के अंत में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम पालन कर रहे हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अगर कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं कि तुम ये करो तो हम करेंगे, ये ब्रजवासी हैं। ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन का उद्देश्य एक ही है, कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्र पूजा बंद करो, ठीक है बंद करेंगे, किसको करना है पर्वत को, चलो पर्वत को करेंगे। तो सारे सामग्री एकत्रित किए, बहुत कई श्लोकों में वर्णन है किस तरह से सारे बड़े अच्छे अच्छे पकवान, दूध से बने हुए दाल, बड़े बड़े कुंड थे। आप बोलोगे दाल के कुंड, हम लोग बांग्लादेश गए थे नरोत्तम दास ठाकुर के जन्मस्थान खेतुरी ग्राम, वहां आज भी वो तालाब है जहां दाल बना था, उसमें कुंड जैसा है उसमें दाल था। इतने लोग आते, आज भी हजारों हजारों लोग आते, 70-80 हजार लोग आते हैं उस खेतुरी ग्राम के गौर पूर्णिमा उत्सव के लिए, नरोत्तम दास ठाकुर के उत्सव के लिए। तो इस तरह से बड़ा बड़े कुंड में दाल और अलग प्रकार के खीर अर्पण किए गए, और हर एक भोग का एक एक पहाड़ बना, लड्डुओं का पहाड़, सब्जियों का पहाड़। हम सोच भी नहीं सकते कैसा हो सकता है, जहां प्रेम है वहां सब कुछ हो सकता है। जब प्रेम है ना तो कोई चीज बोझा नहीं लगता, जहां प्रेम नहीं है हर एक चीज बोझा लगता है। एक पहाड़ खड़ा करने में कोई तकलीफ नहीं है अगर प्रेम है तो, प्रेम नहीं है तो एक छोटा चीज करने में भी तकलीफ होता है। हर एक छोटे छोटे चीज में ध्यान देना प्रेम का लक्षण है। ये मैं एक सन्यासी के साथ एक किसी गृहस्थ के घर में हम लोग गए थे, तो जिस व्यक्ति के घर में गए थे मेरे साथ से जो सन्यासी थे वो उनके गुरु थे, उस गृहस्थ के गुरु थे। तो माताजी गुजराती माताजी, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा प्लेट में सलाद बना के ला के दिया। तो इतना सुंदर से सजाया था वो कि मुझे तो उसको हिलाने का भी दिल नहीं हुआ, क्योंकि एक भी हिलाऊंगा, इतना अच्छा से डिजाइन था वो, सब काकड़ी गोल 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 एक साइज में पूरा एकदम, फिर उसके बीच में गाजर, और वो भी गाजर को भी सुदर्शन चक्र जैसा ऐसा काटे हुए थे, और ऐसा उसके बीच में बीटरूट, उसमें कुछ ऐसा भिंडी खड़ा हुआ, और उसके भी वो अलग अलग प्रकार के, इतने सुंदर से सजाया, गोवर्धन जैसा ही था वो एक प्रकार का सलाड गोवर्धन, इतना सुंदर, कम से कम उनको 2.5 घंटा तो लगा होगा उसको सजाने में, इतना सुंदर सजाया था, मुझे एक भी उठाने का दिल नहीं हुआ, गिलाऊंगा सब गिर जाएगा, अच्छा नहीं लगे। तो मैं सोच रहा था क्या जरूरत है इतना डिजाइन करने का, 2-2 घंटा सब तो खाना तो है अंत में, सिर्फ ऐसा हिला दिया खा लिया खत्म, अरे 4 गाजर रखो, 1 चाकू रख दो, काट के खा लो महाराज, बस क्या इतना सजाना है। नहीं, ये प्रेम का लक्षण है, गाजर रख सकते हैं ना, खा लो, पर थोड़ा प्रेम है, वो प्रेम एक्स्ट्रा, जो खाना खिला रहे हैं पर उसको तो सजाना जो है थोड़ा एक्स्ट्रा। जैसा कभी किसी को, जो प्रिय व्यक्ति को हम एक कार्ड भेजते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा डिजाइन करते हैं, फूल लगाते हैं, कुछ चिपकाते हैं, क्या जरूरत है वो सब चिपकाना, हैप्पी बर्थडे बोल के बोल दो ना, सिर्फ SMS भेज दो, वो तो खोलेगा, हाँ ठीक है, किसने बोला, अच्छा उसने बोला, कोई भी कर सकता है वो। मेरे को किसी ने भेजा उसमें आते हैं वो 72 न्यूज आइटम, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, सब बना बनाया होता है 72, उसमें सिर्फ नंबर प्रेस करो, 16 नंबर प्रेस किया ना पहुंच जाएगा, किसको पहुंचने का, तो उसने 16 नंबर, ग्रीटिंग्स नंबर 16 बोल के मेरे को आया, बोला मैं 16 कौन सा है मेरे को नहीं मालूम, बोले तुमको चाहिए पता करने के लिए तो वो फाइल खोलो तो पता चलेगा 16 कौन सा, हैप्पी दिवाली तुम्हारे लिए, ठीक। इम्पर्सनल हो गया ये, पर्सनल मतलब थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा अच्छे तरह से प्रेम से सजा कर बे, क्यों, वो बोझा नहीं है, वो प्रेम का लक्षण है, जहां प्रेम है वहां ये सब जो कार्य है वो कार्य जो है एक प्रेम का लक्षण है। पर वही अगर घर वाली वो नौकरानी को बोलती अच्छे तरह से सजा, बोले क्यों सजाना है, टाइम पास ऐसे खाने दो ना, क्यों, क्योंकि उस नौकरानी को प्रेम नहीं है उस व्यक्ति के प्रति। तो भगवान को सुंदर सुंदर से हम लोग सेवा करते हैं, सजाते हैं, नहलाते हैं, अगर प्रेम नहीं है तो ये बोझा बन जाएगा, अरे बाप रे क्या दे गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं श्री विग्रह जो है वो गल ग्रह बन जाएगा, गले के ऊपर इतना बड़ा बोझा डाल के चला गया। जहां प्रेम नहीं है वो बोझा है, जहां प्रेम है वो बोझा नहीं है, वो बोझा है, प्रेम का बोझा है वो। जैसे अगर मां बच्चे को जन्म देती है और बच्चा समझ लीजिए थोड़ा हट्टा कट्टा है 7 किलो का, तो किसी और को उठाएगा तो सांस रुक जाएगा उसका, पर मां प्रेम से उठाती है, बोझा उतना ही है वही, नहीं उसके लिए 2 किलो थोड़ी हो गया, 7 किलो का ही बच्चा है, पर क्योंकि वो अपना बच्चा है बड़ा प्रेम है, वो बोझा बोझा नहीं है। तो इस तरह से प्रेम का लक्षण है। तो ब्रजवासियों ने ये कोई क्या बोलते हैं अतिशय उक्ति नहीं है, ये बड़े बड़े पहाड़ बनाए, बड़े बड़े कुंड बनाए, और भगवान ये दिखाना चाहते थे कि आपके प्रेम का जो भोग लगाया प्रेम से आपने, उसको भगवान ने स्वीकार किया है। तो वो कैसे किए, भगवान श्री गोवर्धन का रूप धारण किए, महान विशाल रूप धारण किए, जिनके हजारों हाथ थे, और एक क्षण के अंदर जितने सारे हजारों लाखों ब्रजवासियों ने हजारों लाखों भोग अर्पण किए थे, सबके सब को स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, और कहने लगे अनियोर अनियोर, और थोड़ा दो और थोड़ा दो, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। ब्रजवासियों के पास घर में जो कुछ भी था, अंतिम दाना तक जो कुछ था सब भोग लगा दिए। भगवान सब कुछ स्वीकार किए, बोले और कुछ और थोड़ा। भगवान अनंत हैं, उनका भूख भी अनंत है, और हम जो हैं बड़े नगण्य हैं, कितना तृप्त कर सकते हैं। इसलिए हम सुनते हैं जब भगवान की भूख नहीं मिटती तो क्या करते लोग, एक तुलसी पत्ता डाल देते, भाई सब संतुष्ट हो जाओ आप बस। इसीलिए हम तुलसी डालते हैं, नहीं तो हम तृप्त नहीं कर सकते भगवान को। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, उनको मालूम है, वो तृप्त कर देती है, ठीक है ठीक, संतुष्ट हो गया, डकार मारते हैं। तो भगवान उसे स्वीकार किए, और इस तरह से उन्होंने हमेशा के लिए बता दिया कि गोवर्धन में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। वैष्णव गौड़ी वैष्णव आचार्य आज भी श्री गोवर्धन शिला को भगवान से अभिन्न मानते हैं। आज तक कभी गोवर्धन पर चढ़ते नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कभी वो गए नहीं गोवर्धन के ऊपर। तो तत्पश्चात सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए, और फिर भगवान ने कहा, कृष्ण यहां भी खड़े हुए थे सबके साथ, बोले अभी प्रणाम करो, सबने प्रणाम किया, और बोले चलो अभी अच्छी तरह से सबको खिलाओ। और अब ब्राह्मणों को खिलाया, गौओं को खिलाया, कुत्तों को खिलाया, चांडालों को खिलाया, सबको खिलाया, और उसके बाद अच्छे सर से सज धज कर गायों को सामने रखते हुए श्री गोवर्धन की परिक्रमा की। बहुत सुंदर परिक्रमा हो गई, सब संतुष्ट हो गए, सब घर पधारे, बड़ा उत्सव हो गया, सब आनंदित थे। सिर्फ एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं था, और वो थे इंद्र। इंद्र इतना क्रोधित हो गए, ऐसे कैसे, इतने साल से ये पूजा कर रहे हैं मेरी, हालांकि ये कोई शास्त्रीय पूजा नहीं थी, ये लौकिक पूजा थी, पर इतने साल से कर रहे हैं और आज इन्होंने रोक दिया एक बालक के कहने पर। वाचालम, बहुत ज्यादा बड़बड़ करने वाला बालक, बड़ा बड़ा सिद्धांत कहता है, मूर्ख है, अज्ञ है, ज्ञान नहीं उसको, इसीलिए गाय चराने जाता है। कभी कभी किसी को गाली देते बोलते जा गाय चराने जा, तू ना भैंस चराने जा, मतलब तेरे को दिमाग नहीं है तो भैंस चरा तू बस, दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थिति है, ऐसा नहीं बोलना। तीसरे बोले ये अज्ञ है, मूर्ख है, क्या मालूम इसे, बहुत बड़बड़ करता है। और इसके कहने पर सारे ब्रजवासियों ने इतने सालों से आया हुआ इंद्र पूजा को नहीं किया। तुरंत इंद्र ने संवर्तक को बुलाया। संवर्तक बादल, वो बादल हैं जैसे हमारे एक व्यक्ति की राजा की सेना होती है, ऐसे इनकी सेना है इनके बादल। और संवर्तक बादल उस समय उपयोग होता है जब पूरे संसार का प्रलय हो जाना चाहिए उस समय, और उस समय बारिश बूंद में नहीं गिरते, ऐसे मतलब पिलर क्या बोलते हैं, खंबे जैसे गिरते हैं। और देखते 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 जमीन नाम का चीज कुछ दिखता ही नहीं है, पूरा का पूरा एक समुद्र बन जाता है पूरा विश्व। इस प्रकार के बादल, सब प्रकार के तूफान जैसे हवा के साथ, वो भी अलग अलग प्रकार के नाम हैं, अलग अलग प्रकार के हवा, ठंडी हवा, बोले पूरे विश्व को नाश करने वाले बादल को केवल वृंदावन में फोकस किया। अब बोलो पूरे भारत में जितने सारे आर्मी है, मिलिट्री है, सबको लाके कोल्हापुर पे आक्रमण करो, बोलो क्या होगा, कोल्हापुर यहां भी कोई कम नहीं है, पर एक जगह पर, कोई एक जगह रंकाला के पास आक्रमण करो, अरे कितने तोप हैं, कितने मिसाइल्स हैं। इंद्र के पास जितने सारे शक्ति थी, सारे शक्ति केवल 84 कोस का जो ब्रज भूमि है उसके ऊपर फोकस किया। आप सोचो क्या हालत हुआ होगा। बंबई में एक बार थोड़ा ज्यादा बारिश हो गया, हमारे एक भक्त कुरला में थी, वो वहां सबसे ज्यादा बारिश हो गया, देखते 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 9 फुट आ गया और उनका थोड़ा ऊपर में, देखते देखते खिड़की से पानी आने लगा। तब उनको समझ में आया, वो दरवाजा खोलने गई, दरवाजा खोल नहीं रहा है क्योंकि दबाव आ गया ऊपर से, दरवाजा खोल नहीं रहा है और खिड़की से पानी आ रहा है, उनके घर का टीवी जो है तैरते तैरते खिड़की से बाहर चला गया। और किसी तरह से वो दरवाजा को धक्का मारे, ऊपर से चिल्ला रहे, ऊपर से आ जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ, आने नहीं हो रहा है, दरवाजा खुल नहीं रहा है। उन्होंने फिर बहुत मुश्किल से धक्का मारा, फिर पानी आ गया, दोनों छतरक गिर गए, पति पत्नी, वो 60 साल के, वो 65 साल के, कैसे तो उठकर भाग के ऊपर आ गए और 13 फुट पानी आ गया, मतलब उनका घर थोड़ा 4 फुट ऊपर है, 13 फुट ऊपर पानी आ गया। 4 दिन के बाद जब नीचे गए, मैं फोन किया था, फोन किसी तरह काम करना शुरू किया था उनका, तो मैंने फोन किया तो वो बोली, हंस रही थी वो, मेरे को लगा मैं थोड़ा रो रही होगी, उसको थोड़ा सांत्वना देंगे, तो अब बहुत बोले क्या हो गया, बोले क्या, बोले देखो कृष्ण देख के हंस रहे, बोले सब चीज खत्म हो गया, एक ही था, एक फोटो कृष्ण का, वो मुरली बजाते हुए देख रहे हंस रहे बस, बोले मैं देख रही हूं बस। मैं बोला माता जी दंडवत प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, सर्वनाश हो गया फिर भी आप मुस्कुरा के बोल रही हो कृष्ण देखो क्या लीला करते, बोले आपके जैसा मेरा विश्वास होगा तो आज मैं भगवत धाम चला जाऊंगा। ये 2-3 घंटे के लिए बारिश हुआ था, कई लोग खत्म हो गए, कई लोग गुजर गए, एक व्यक्ति दोनों चेन पकड़ के सब जा रहे थे और ऐसा अंदर चला गया, एक मैन होल था, चला गया अंदर, वो कई लोग मर गए, 2 घंटे का बारिश, मुसलधार बारिश। अब आप सोचो ये तो मुंबई का बारिश है, संवर्तक बादल के बारिश, और एक दिन नहीं 7 दिन और 7 रात लगातार, हम सोच भी नहीं सकते क्या हालत हुई होगी उन ब्रजवासियों की, घने बादल, बिजली चमक रही है और ठंडी हवा आर पार जाने वाले, घरों में भी बैठ नहीं सकते, सबके सब भागे कृष्ण के पास क्योंकि उनको एक ही मालूम है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, कुछ भी समस्या आए तो एक ही मालूम है, कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण कृष्ण वहां भाग गए वहां। कृष्ण ने कहा आपने गोवर्धन का आश्रय लिया ना, चलो गोवर्धन के पास। भगवान की एक अचिंत्य शक्ति है, उसके द्वारा जब भगवान अपने घर से निकले गोवर्धन तक, एक बूंद बारिश भगवान की जो मोर पंख के ऊपर का जो हिस्सा उसको भी स्पर्श नहीं कर पाई, एकदम सूखे सूखे आराम से चलते हुए, ऐसा नहीं कि भाग के गए, भगवान आराम से चलते गए गोवर्धन के पास और बोले आ जाओ सब लोग, बोले कहां आ जाओ, और देखते देखते भगवान ने गोवर्धन पर्वत जो उस समय 2 मील लंबा और काफी चौड़ा है, घूमने में हमको चार बहुत चुस्ती से अगर आप चले 21 किलोमीटर है, आज कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के समय में कुसुम सरोवर से दिखता था वो, आज वहां से दिखता भी नहीं, आज इतना कम हो गया है, तो द्वापर के अंत में आप सोचिए कितना लंबा चौड़ा था, बाएं हाथ की छोटी उंगली में भगवान ने उठाया और बोले सब लोग आ जाओ, सबके लिए जगह है, ये भगवान की अचिंत्य कृपा है, भगवान की अचिंत्य कृपा कि उन्होंने बड़े आसानी से, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, बाएं हाथ की छोटी उंगली से, क्योंकि बाएं हाथ का जो छोटी उंगली है ना सबसे दुर्बल अंग है शरीर का, दाहिने हाथ की छोटी उंगली से थोड़ा कुछ काम कर सकते हैं, बाएं हाथ की छोटी उंगली जो है बहुत ही दुर्बल है, इसीलिए हम किसी को कहते हैं तू मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली का खेल है, मतलब तू अपना पूरा ताकत लगाएगा और मेरी ये ताकत काफी है, भगवान ने बोला नहीं करके दिखाया, इंद्र अपना पूरा ताकत डाल रहा है और भगवान अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली, वो भी जरूरत नहीं था पर थोड़ा भड़काने के लिए, चुपचाप खड़े रहते तो उतना मजा नहीं आता, बाएं हाथ की छोटी उंगली पकड़ के दे देख, सात दिन और सात रात तक। प्रश्न उठ सकता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं तात्पर्य में, कोई पूछ सकता है कि ब्रज में, अरे नंद महाराज के ही 9 लाख गाय, नंद महाराज के केवल, फिर दूसरे ग्वाल बालों का क्या कहना, असंख्य गाय, इतने लाखें लाख जो है ब्रजवासी, और उनके सामान सब कुछ ले आए, वो एक पर्वत के नीचे कैसे आ सकता है वो? तो कहते कि नहीं, क्योंकि भगवान के स्पर्श में गोवर्धन आए हुए थे, दिव्य आनंद, भगवान के स्पर्श में उनको इतना दिव्य आनंद था, इतना विस्तृत हुए कि सबके सब जितना जरूरत था सब लोग आ पाए, एग्जैक्टली जितना जरूरत था उतना विस्तृत हुआ गोवर्धन। यह अचिंत्य शक्ति है भगवान की, गोवर्धन की कृपा की। और आचार्यों ने ये 7 दिन और 7 रात में जो गोवर्धन के तले सुंदर लीला हुई, भगवान के साथ प्रेममय आदान प्रदान हुआ भक्तों का, इसको बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन किया है रूप शिव गोस्वामी ने। समय नहीं है, ज्यादा वर्णन नहीं कर सकते उसको, बहुत ही सुंदर लीलाएं ग्वाल बालों के साथ, माताओं के साथ, माता रोहिणी, माता यशोदा के साथ, गोपियों के साथ, गायों के साथ, सबके साथ आदान प्रदान हो रहा था, पांचों रस का आदान प्रदान हो रहा था। ऐसा कभी नहीं होता था, भगवान कभी गोपियों के साथ होते थे, कभी गोप बालकों के साथ, कभी गायों के साथ, कभी माताओं के साथ, पर अब। और अजीब चीज तो यह था कि गोवर्धन के नीचे जितने सारे गाय, जितने सारे ग्वाल बाल, जितने सारे गोप माताएं थी, सबको ऐसे लग रहा था कि भगवान केवल मुझको देख रहे हैं। इसीलिए 7 दिन और 7 रात तक न कोई खाया, न कोई सोया, न कोई पिया कुछ। इसका मतलब है कृष्ण कथा का वो कृष्ण का वो दर्शन कर रहे थे, क्योंकि आत्मा के स्तर पर है। परीक्षित महाराज भी कहते हैं दशम स्कंद के शुरुआत में, कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, आप कथा सुनाते रहिए, मैं 7 दिन से कुछ खाया नहीं हूं, मैं 7 दिन से कुछ पिया नहीं हूं, न सोया हूं, पर मुझे वो थकावट नहीं हो रही है, मुझे किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले मैं खाया नहीं था, पिया नहीं था, थका हुआ था, प्यासा था, सम्यक ऋषि के घर गया, आश्रम में गया, पानी मांगा, वो नहीं दिए, मैं क्रोधित हो गया और उनके गले पे मैंने एक सांप, मरे सांप को लटका दिया। पर आज 7 दिन से खाया नहीं हूं, पिया नहीं हूं, सोया नहीं हूं, पर कोई थकावट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण कथा का अमृत पिला रहे हैं मुझे। इसीलिए कोई चीज बाधा नहीं कर रही है मुझे, कोई भौतिक चीजें बाधा नहीं कर रही है। यह कृष्ण के संबंधित कोई भी चीजों का, कृष्ण का नाम हो, कृष्ण का रूप हो, कृष्ण के गुण हो, कृष्ण की लीलाएं हो, कृष्ण के धाम हो, इनमें कोई अंतर नहीं है। अगर हम उस स्तर पर आ जाएं और उस रस का आस्वादन करने लगे, निश्चित रूप से भौतिक समस्याएं जो द्वंद्व हैं, वो हमें आज बहुत जो सताती है वो नहीं सताएगी। कम से कम जब तक सुन रहे हैं तब तक नहीं सताएगी। और इसीलिए सततम कीर्तय अंतो माम, बार बार सुनते रहना चाहिए। ये सब पढ़ते जब हैं तो हमें लगता है क्या दंत कथा है, ऐसे कैसे हो सकता है गोवर्धन उठा है। देखो जो कार्टून में आता है ना, कार्टून पिक्चर में कोई ही मैन शक्तिमान कोई तो ऐसा उठाता है, हमको लगता है कि ऐसे कुछ कथा है, ये सब क्या सुन रहे, बचपन आ जाए हमारा। पर हम देखते हैं ये कोई श्रील प्रभुपाद जी ऐसे एक सुपरमैन थे, वो भी ये कोई क्या बोलते हैं मनगढ़ंत बात नहीं है. इट इज नॉट स्पेकुलेटिव नॉलेज. हमने सुना है, वीडियो में हमने देखा है, ऐसे व्यक्ति थे, किस तरह से उन्होंने चमत्कार किया. श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे गोवर्धन को उठाए भगवान की कृपा से, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामनामृत संघ का गोवर्धन, जिसके अंदर कोई भी आ जाएगा तो उसको ये जो तीन गुणों का जो बारिश है, द्वंद्वों का जो बारिश है, उससे वो बचा रहेगा जिस हद तक गोवर्धन के नीचे खड़ा रहेगा. कैसा एक व्यक्ति ने ऐसे एक संस्था का निर्माण किया, ऐसा एक घर बनाया जिसके अंदर पूरी दुनिया आ सकती है. ये कितना मुश्किल है. हर एक व्यक्ति अहंकारी होता है, मैं अमेरिकन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये लोग सब काले लोग हैं, मैं तो गोरा हूं. कितना बड़ा अहंकार का पहाड़ है जो हमें दूर कर देता है एक दूसरे से. पर ये सारे पहाड़ों को चूर करके सबको एक साथ लाना, अंतरराष्ट्रीय संघ जहां न रंग का भेदभाव है, न स्त्री पुरुष का भेदभाव है, हर एक व्यक्ति कृष्ण से संबंधित है. और जिस हद तक ये आश्रय लिए हैं उस हद तक भौतिक जो द्वंद्व है उसे हम परे अपने आप को देखेंगे. तो इस तरह से ये सुंदर लीला संपन्न हुई वहां. तत्पश्चात भगवान ने एक ग्वाल बाल को कहा कि भाई देख, जाके देखो. इंद्र ने सात दिन तक, सात रात तक पूरा लगाया, उसके बाद देखा कि कुछ हो ही नहीं रहा है. तब उसे समझ में आया, जब सारा गुस्सा निकल गया तब उसे समझ में आया कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई मुझसे, बहुत बड़ा अपराध कर बैठा मैं, किसके प्रति मैं ये सब प्रकट कर रहा हूं. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, बहुत बड़ा गलती किया मैंने. तो तुरंत उसने बादलों को बुला लिया और वहां से चला गया वो, डर के मारे कि और ज्यादा करूंगा तो और भी समस्या आ जाएगी, चला गया. तत्पश्चात एक ग्वाल बाल को भगवान श्री कृष्ण ने भेजा, जा देखे आओ क्या समाचार है बाहर का. तो ग्वाल बाल आके कहता है काले काले बादल सब चले गए, एक ही चीज काला है, इंद्र का मुंह. बारिश तो पूरा रुक गया है, पहाड़ के ऊपर का बारिश बंद हो गया, पहाड़ के नीचे बारिश हो रही है. बोले कौन सी बारिश? ब्रजवासियों की आंखों से आनंद का बारिश हो रहा है, बस और सब ठीक ठाक है, सूरज उग गया है. तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने सबको हकल, जाओ सब लोग आप कृपया वापस जाइए. कोई जाने की इच्छा नहीं, बोले नहीं यही रहेंगे अभी बस. बोले नहीं नहीं कृपया आप लोग जाइए. चले गए और तत्पश्चात बहुत सुंदर से वर्णन है एक पूरे अध्याय में किस तरह से इंद्र लज्जित होकर डर के मारे एम्बैरेसमेंट पश्चाताप करते हुए बोलता है मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं. मेरु पर्वत पर जाता है, ब्रह्मा जी को अपना सुनाता है किस तरह से मैंने इतना बड़ा अपराध किया. तब ब्रह्मा जी उसे डांटते हैं और कहते हैं कि मूर्ख तूने बहुत बड़ा अपराध किया. तब समझ में आता है कितना बड़ा अपराध, कितना बड़ा अपराध मालूम नहीं था इंद्र को जब तक ब्रह्मा जी से सुना नहीं. अब जब उसने देखा और अपने सुना भी तब उसे समझ में आया कि बहुत बड़ा अपराध मुझसे हो गया, मैं जानता भी नहीं था. और तब पूछा ब्रह्मा जी से मैं क्या करूं. तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम अगर जाओगे तो भगवान तुमको देखेंगे भी नहीं, बातचीत करना तो दूर की बात. और इंद्र भी बोला मैं जा कैसे सकता हूं, किस मुंह से दिखाऊंगा उनको जाके. उनके भक्तों को मैंने समाप्त करने का प्रयास किया था, सबसे एकदम निकटतम भक्तों को. उन्होंने कहा एक काम करो, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च. भगवान को गाय बड़े प्रिय हैं, सुरभि गाय को लो, सबसे पहले उसके पास जाके उससे पैर पड़ो. कहां इंद्र देवों का राज और कहां एक गाय, गाय के पैर पड़ रहा है. बड़े नम्रता. और तब सुरभि माता कहती है चलो मेरे पीछे पीछे आओ. ले गई वृंदावन में गए, भगवान एक दिन ऐसे भ्रमण करते करते आए गोवर्धन पर देखने के लिए, कहां कहां क्या क्या डैमेज हुआ है, कुछ हुआ है क्या, कुछ रिपेयर करना है क्या। एकांत में देखकर इंद्र को बोली, जाओ पैर पड़ो जाओ। तो इंद्र आया एकदम दंडवत, दंडे के जैसा था, सीधा गिराओ, बहुत हृदय से माफी मांगा, पश्चाताप के हृदय से। बहुत सुंदर वार्तालाप है। और तत्पश्चात भगवान ने भी थोड़ा डांटा, बोले ऐसी मूर्खता बाद में मत करना, जानते थे फिर करने वाला है, हृदय से नहीं बोल रहा है, हाँ 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 कर रहा है, पर पश्चाताप मतलब थोड़े समय के लिए था। एक बार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, पश्चाताप था पर हृदय से नहीं निकला, इसीलिए फिर से किया उसने। हृदय से निकलता तो फिर से नहीं करते थे। हाँ, भगवान उसको उपयोग करते हैं हम लोगों को कुछ सिखाने के लिए, जो अपने आप को इंद्र मानते हैं। तो इस तरह से माफी मांगा, फिर भी भगवान देख रहे थे। फिर सुरभि आई, वो प्रार्थना की और बोले कि प्रभु माफ कर दो, सही में थोड़ा बुरा लग रहा है उसे। तब भगवान ने माफी किया और तब गोविंद कुंड, आज भी वहां सुंदर है गोवर्धन के बगल में, वहां सुरभि ने भगवान को अपने ही दूध से, अमृत जैसे दूध से अभिषेक किया। तत्पश्चात इंद्र ने भी, इंद्र हिचकिचा रहे थे, मैं कैसे जाऊं, पास जाऊंगा तो देखेंगे भगवान मेरे को, बोले जाओ जाओ। अदिति और दूसरे माताओं ने कहा जाओ 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 जाओ। आकाश गंगा जो है, गंगा जी को लेकर ऐरावत के सूंड के द्वारा उस गंगा स्नान कराए भगवान को और कहा आप हमारे इंद्र हो और आप गोविंद, तब उनका नाम पड़ा गोविंद। गो यानी गाय को संरक्षण करने वाले, ग का दूसरा मतलब है सारे देवताओं का राजा यानी इंद्र। इस तरह से भगवान को ये नाम गोविंद वहां दिया गया गोविंद कुंड में। और इस तरह से इंद्र वापस अपने लोक में पधारे। श्रीमती राधा रानी और सारी गोपियां भी इनका गुणगान करते हैं। आज सुबह हमने चर्चा किया भागवत में, गोवर्धन को प्रार्थना करती हैं और कहती है, संबोधित कहती है कि हरिदास वर्यो, हरिदास बहुत हुए, युधिष्ठिर महाराज उद्धव को हरिदास बताया गया है, पर हरिदास वर्यो सबसे श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे सेवक हैं, न केवल भगवान कृष्ण और बलराम की और गोपियों गोप गोपियों की, बल्कि जितने सारे पार्षद हैं ब्रज के, सबकी भी सेवा करते हैं गोवर्धन। उन्हें मालूम है किस तरह से, और सेवा करने में आनंद लेते हैं और सेवा कर आनंद देते हैं जिनकी सेवा करते हैं वो। यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, फर्स्ट क्लास सेवक, जैसे हनुमान जी। हनुमान जी को सिर्फ भगवान ने बोला था, प्रभु रामचंद्र ने, कि सीता को पता लगा के आओ, बस इतना ही था ना, करके आ सकते थे, बोले मैंने देख के आया, वो लंका में है, बस बैठी हुई है वो। हनुमान जी ने एक्स्ट्रा सेवा किया, न केवल सीता जी का पता लगाया, सबसे बड़ी बात, उसके बाद वो तो आत्महत्या करने वाली थी, तंग आकर निराश होकर उनको सांत्वना दी, डरी हुई थी वो, उनको अभय प्रदान किया, आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया, प्रभु रामचंद्र जल्द से जल्द आएंगे, कोई चिंता मत कीजिए, उनको प्रसन्न किया, राम जी के बारे में बताकर सुंदर रूप से राम का वर्णन करके आनंदित किए, प्रोत्साहित किए, और फिर पूरा आश्वासन देकर प्रभु रामचंद्र को आकर पूर्ण रूप से सुनाया। प्रभु रामचंद्र ने यह आलिंगन बहुत कम लोगों को दिया है, भरत को दिया था, और अब हनुमान जी को आलिंगन किए, कहा भरत सम तुम प्रिय भाई, सहस वदन तुम्हारो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे हृदय की बात को जान ली, जो मैं चाहता था तुमने उसे किया। तो इस तरह से हरिदास वर्यो, तो गोवर्धन जो है भक्तों में सर्वे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान के हृदय से ही निकले हुए हैं, उनके हृदय की बात जानते हैं। और गोवर्धन जो है कामगिरी, कामगिरी मतलब सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और गोवर्धन की पूजा कैसे किया जाए भगवान ने बताया, गोवर्धन की परिक्रमा। तो आज हम लोग सुंदर गोवर्धन का निर्माण किए, वहां भक्तों ने अगर प्रेम से बनाया है और अपनी श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे तो गोवर्धन से अभिन्न है। सारे आचार्यों ने गोवर्धन की परिक्रमा की है, जिस तरह से बताया था भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले। श्री चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन की परिक्रमा किए, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, रघुनाथ दास गोस्वामी वहां हमेशा वहां निवास किए गोवर्धन के तट पर। सनातन गोस्वामी जब वो चकलेश्वर गोवर्धन के पास निवास करते थे, हर रोज वृद्ध अवस्था में भी हर रोज गोवर्धन की परिक्रमा हर रोज करते थे। यहां तक कि भगवान आकर उनको कहना पड़ा कि इतना परिक्रमा आप मत कीजिए, ये लीजिए ये गोवर्धन का एक शिला, आप इसको आप 4 बार परिक्रमा कीजिए, काफी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर अपना भजन कुटीर वहीं बनाए, वहां निवास करते थे। श्रील प्रभुपाद जी का जब शरीर छोड़ रहे थे 1977 में नवंबर में, शरीर छोड़ने के थोड़े दिन पहले उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहता हूं। इतना महत्वपूर्ण है ये गोवर्धन परिक्रमा कि अंतिम इच्छाओं में से एक थी प्रभुपाद जी की कि मैं गोवर्धन की परिक्रमा करूं वृंदावन में। तो इसके दौरान हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए गोवर्धन से, ए हरिदास वर्यो, आप तो हरिदासों में श्रेष्ठ हो, कृपया आपकी कृपा का एक बूंद हमें दीजिए हमारे हृदय में, ताकि हम भी कृष्ण को प्रसन्न कर सकें, कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न कर सकें, सचमुच में उनके दास दास दासों के दास बनकर रह सके। जो जीवन का उद्देश्य है, जो जीवन की परिपूर्णता है, श्री संप्रदाय के महान आचार्य हुए मुकुंदमाला स्तोत्र नाम का उन्होंने रचना की है, कुलशेखर आलवर, वो कहते हैं, मत जन्म न फलमिदं मधुकैट बारे, मत प्रार्थनीय मद अनुग्रह एषैव, त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। मत जन्म न फलमिदं मधुकैट बारे, हे मधुकैटव को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण, मत जन्म न फलमिदम, मैं समझूंगा मेरा जीवन का परिपक्व फल मुझे मिल गया। मत प्रार्थनीय, मेरी एक ही प्रार्थना है जीवन में। मत अनुग्रह, मैं समझूंगा कि मुझे सचमुच में आपने अनुग्रह किया है। कब? जब आप मुझे स्वीकार करोगे। किस तरह से? त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ, कि आप अपने सेवकों के सेवकों के सेवक मानेंगे। यह हमने कई बार सुना है, पर यह सेवकों का सेवक बनना क्या समस्या है? सचिनंदन महाराज एक बार सुरभि कुंड पे हम लोग सब बैठे हुए थे वृंदावन यात्रा में, तब उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उनके हाथ में एक पपाया था, तो उन्होंने बोला, आप सो ये पपाया देख रहे हो? 900 लोग बैठे हुए थे, बोले सब लोग देख रहे हो? बोले हाँ। आज मैं तुमको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखाने वाला हूं, बोले ये पपाया जो है अभी फ्रेश है, एकदम अच्छा लगता है कि नहीं, पर अगर इस पपाया का आप छिलका निकाल दो, छिलका निकालकर 1 घंटे के लिए भी अगर रखो तो सारे कीड़े आ जाएंगे और जल्दी जल्दी सड़ के खराब हो जाएगा ये पपाया। एक केला निकालो, केले का छिलका निकाल के रख दो तो सड़ जाएगा वो, सारे कीड़े आके बैठेंगे, छोटे छोटे क्या बोलते कीड़े आके बैठेंगे और सड़ जाएगा वो। तो छिलका नहीं निकालना, भगवान ने कितना सुंदर से छिलका बना के भेजा है, डाल के भेजा है, जब छिलका रहता है तो फल अच्छा रहता है अंदर, छिलका निकल गया तो चला जाएगा। तो बोल रहे थे ये छिलका क्या है, ये छिलका जो है ये नम्रता का है। तृणादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदाहरि। बोले ये छिलका अगर रहेगा ऊपर तो हमारा जो फल है कृष्ण प्रेम का फल सुरक्षित रहेगा, कीर्तनीय सदाहरि। अगर नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ा समस्या है दासानुदास बनने का ये अहंकार। इसने ऐसा क्यों बोला मुझे, मेरे को नहीं चाहिए हरे कृष्ण, ना बहुत बड़ा एहसान किया तुमने हरे कृष्ण करके, इसने मुझे ऐसा क्यों देखा, इसीलिए मैं भक्तों को देखूंगा ही नहीं, इसने ऐसा क्यों मुंह टेढ़ा किया। अरे उसका है ही टेढ़ा तो क्या करेगा, वो हंसता तो थोड़ा टेढ़ा ही होता है, क्या करेंगे। कितना अहंकार को चोट लगता है, पर हम नहीं जानते, हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा ही। सबसे बड़ा शत्रु अंदर ही बैठा हुआ है और इसके कारण कृष्ण की सेवा जो करोड़ों जन्मों के बाद एक मौका मिला है, सौभाग्यवान व्यक्ति को मिलता है, उससे दूर चले जाते हम लोग, क्योंकि ये छिलका निकल जाता है। एक बार छिलका निकल गया तो हजारों अनर्थ के कीड़े तुरंत आकर सड़ा देंगे, खत्म कर देंगे हमारे हृदय की भक्ति को। बहुत मुश्किल है, बोलना बड़ा आसान है, कई बार हमने प्रवचन दिया है, सुना भी है, गोवर्धन की परिक्रमा भी की है, भीख भी मांगा है, पर इंद्र जैसे है। अभी गोवर्धन के बाद माफी मांगा, फिर पारिजात वृक्ष ले लिया, फिर से तलवार लेके आ गए। बहुत मुश्किल है। एक बार एक आचार्य गुजर गए, गुजरते वक्त सारे शिष्य आए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपके जाने के बाद इस मठ का अध्यक्ष कौन बनेगा। तो गुरुदेव जाते जाते बोले जिसने अहंकार को जीत लिया है वो इस मठ का क्या बोलते हैं अधिपति, जो अध्यक्ष बनेगा। तो गुरु के जाने के बाद सब शिष्यों ने पूछा क्या हो गया, अहंकार ने जीत लिया, तू जीत लिया, तू जीत लिया। तब पूछ रहे किसने जीता, किसने जीता। मठ का अध्यक्ष वो बना जिसने कहा अहंकार ऐसी चीज है, मरते दम अंतिम सांस तक मुझको लड़ना पड़ेगा इससे, वो अध्यक्ष बना। क्योंकि ये चीज नहीं जाती है, अगर अहंकार को फेंक दिया आपने तो फेंकने का अहंकार आ जाएगा फिर से, फूंक रावण के सर जैसा है, एक काटो तो दूसरा निकलेगा, है ही ऐसा अहंकार। हम भी छोटे छोटे इंद्र हैं, हम हंसते हैं इंद्र को तकलीफ हुआ था, इंद्र जैसा नहीं हो आप लोग समझो, पर ये बोलने वाला का अहंकार हो गया कि तुम लोग सब इंद्र हो और मैं कृष्ण का एकदम निकटतम शिष्य हूं, हो गया अहंकार। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमने इसको पाल पोस के हट्टा कट्टा बड़ा कर दिया है। अभी इतना खाना चाहता है वो, उसको एक दिन भी नहीं खाना खिलाएगा तो तुमको खा के खत्म कर देगा, और खाना चाहिए। और उसके लिए क्या खाना चाहिए, मान सम्मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा गुणगान सब जय जयकार करना चाहिए। चार दिन अगर नहीं किया तो भूखा मर जाएगा, सबको मार डालेगा। उसको एक ही चीज है, उसको भूखा रखना। दो प्रकार के कुत्ते हैं हमारे हृदय में, एक कुत्ता पोमेरियन जैसा है, इतना छोटा वाला फू 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 करता रहता है, और दूसरा एक जर्मन ऑल्सेशन कुत्ता वो करता है तो चार बिल्डिंग को सुना हिल जाता है पूरा। और ये बड़ा कुत्ता जो है शक्तिशाली कुत्ता, ये हमारा अहंकार है, और दूसरा जो नम्रता कुत्ता है इतना नम्र है वो कुछ ताकत ही नहीं है उसका। तो इसको थोड़ा थोड़ा भूख से खत्म करना चाहिए, और इसको थोड़ा खिला के थोड़ा मोटा तगड़ा करना चाहिए। इसको खिलाना कब, इसको खिलाना अगर भूखा रखना है तो एक ही तरीका है, इन चीजों की इच्छा मत रखो। कोई अगर गुणगान करे तो समझना विष पिला रहा है तुम्हें। वो गोपाल भट्ट ने षड गोस्वामी गोपाल भट्ट ने और एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जब कोई जब गुणगान उनगान करता था तो बोले विष्णु 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 ये सब नहीं नहीं अपने गुणगान विष जैसा लगना चाहिए और दूसरों का गुणगान करने में है नहीं तो ढूंढो। मक्खी जैसा हम लोग क्या करते हैं अच्छे अच्छे बगीचे में भी गंदगी ढूंढने का प्रयास करते हैं, एक गंदगी में भी अगर थोड़ा कुछ अच्छा है तो उसको ढूंढो और उसका गुणगान करो, बस वही एकमात्र तरीका है इस मोटे कुत्ते को धीरे धीरे भूख मतलब भूख से मार देना। और इस ये जो छोटा सा दुबला पतला मर जाने वाला नम्रता का कुत्ता है ना उसको खिला पिला के बड़ा करने का, कब झुक झुक के प्रणाम करो सबको, प्रणादपि सुनिचेन, क्या आ जाता है कम कुछ करने खत्म नहीं होता कुछ, बहुत मुश्किल है, इसीलिए बार बार याद दिलाना पड़ता है, इसीलिए आचार्यों ने हर साल रखा है गोवर्धन पूजा। जिंदगी में एक बार गोवर्धन जाके परिक्रमा हो गया ऐसा नहीं, हो सके तो हर रोज करो हर रोज। तो ये जब पढ़ेंगे हमें समझना चाहिए कि हम इंद्र हैं, इस भावना से अगर ये पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे। भगवान कह रहे हैं इंद्र को ध्यान से रखो, वापस जाओ अपनी सेवा में, पर फिर से ऐसा मत करो, याद रखो, तब हम समझ पाएंगे क्यों आचार्यों ने इसको ग्रंथ की रचना की है, ये लीला की है भगवान ने, बहुत जरूरी है हमारे लिए। एक एक अध्याय जो है, एक एक सीख जो हमें सिखाता है बहुत महत्वपूर्ण है अगर कृष्ण प्रेम हमको प्राप्त करना है तो। तो आज के दिन अभी हम लोग दामोदर अष्टकम करेंगे अनाउंसमेंट के बाद और तत्पश्चात गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, तो कृपया सब लोग बड़े उत्साहपूर्वक इस गोवर्धन का परिक्रमा कीजिएगा, बताएंगे आपको किस तरह से करना है, और करते वक्त कृपया बड़ी कृपया प्रजल्प मत कीजिए, आप समझिए आप वृंदावन में हैं, गोवर्धन के सामने खड़े हैं और अपनी श्रद्धा की आंखों से देखेंगे तो निश्चित रूप से भगवान नजर आएंगे और गोवर्धन से, क्योंकि कामगिरी है और आज का दिन गोवर्धन पूजा का दिन उस व्यक्ति से अभिन्न है, तो आज के दिन अगर हम प्रार्थना करेंगे कि हमें सचमुच में हमारे जीवन की जो परिपूर्णता है कि आपके दासों के दासों का दास कृपया स्वीकार कीजिए, और ये जो पर्वत है अहंकार का पर्वत जो इंद्र के हृदय में भी था वो कृपया चूर चूर कर दीजिए प्रभु, और वो जो नम्रता का जो पहाड़ है गोवर्धन जैसा सेवा का पहाड़ उस पहाड़ का निर्माण हमारे हृदय में कर दीजिए बस, ताकि हम हमेशा दास दासानुभाव से न केवल भगवान की सारे भक्तों की अच्छी तरह से सेवा करते रहे, उनको प्रसन्न करें और इस तरह से भगवान के संपर्क में हमेशा रहें। जय गिरिराज गोवर्धन की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरे।